इशिका और अभिमन्यु केशव के यहाँ डिनर के लिए आए थे। केशव इशिका से अपनी बेटी के तौर पर मिलकर खुश हो रहे थे, तो साथ ही उन्हें ये भी याद था कि उन्होंने अभिमन्यु को अपनी बेटी से शादी करने से बहुत मनाया था। उनकी इतनी मिन्नतें करने के बाद भी अभिमन्यु नहीं माना था, तो उन्होंने गुस्से में यही कहा था कि अगर गलती से भी उनकी बेटी की शादी अभिमन्यु से हो गई तो वो उनका तलाक करवा देंगे। अपनी बात पर कायम रहते हुए मिस्टर सिंघानिया ने अभिमन्यु को डिवोर्स पेपर भेज दिए थे। उन लोगों के बीच मीठी नोकझोंक चल रही थी कि तभी राधिका वहां पहुंची। राधिका ने दूर से देखा, इशिका और केशव दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में एक चमक थी जिसे देखकर राधिका के चेहरे पर भी सुकून के भाव थे। लेकिन तभी केशव की नज़र राधिका से मिली तो गुस्से से उनकी मुठ्ठियाँ कस गई थीं। अभिमन्यु का ध्यान उनकी तरफ गया तो वो उनके जज्बातों को समझ गया था। वैसे भी मिस्टर सिंघानिया उसके मेंटोर थे, उसने उनके साथ टाइम बिताया था तो वो उनके चेहरे के भाव से ही समझ जाता था कि उनके दिल में क्या चल रहा होगा। वहीं इशिका ने राधिका को वहां देखा तो वो हैरान हुई। वो मुस्कुराते हुए राधिका की तरफ बढ़ते हुए बोली, माँ आप भी यहाँ आने वाली थी, आपने पहले बता दिया होता तो हम सब साथ ही आ जाते। हाँ मुझे थोड़ी देर पहले ही इन्विटेशन के लिए कॉल आया था, राधिका ने जवाब दिया। अरमान उनको ग्रीट करने के लिए उनके पास आते हुए बोला, हाँ मैंने मिसेस सिंघानिया को डिनर के लिए इनवाइट किया था। कैसी हैं आप मिसेस सिंघानिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, राधिका बोली। केशव राधिका को वहां से निकालना चाहता था। वो गुस्से में अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता, उससे पहले अभिमन्यु ने उनका हाथ रोक लिया। वो उनकी तरफ ना में सिर हिलाकर धीमी आवाज में बोला, आप जो करने का सोच रहे हैं वो गलती से भी मत कीजिएगा। इशिका अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, उसके सामने अगर आपने मिसेस सिंघानिया के साथ ज़रा सी भी बदतमीजी की तो वो कभी आपको अपने डैड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुरंत यहाँ से चली जाएगी। मैं आपके इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन मिसेस सिंघानिया ने मर्चेंट फैमिली की वजह से आपसे सच छुपाया था। क्या वो मुझे इतना कमज़ोर समझती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ किसी तरह के एक्सपेरिमेंट होने देता? अरे उस आदर्श से तो अच्छा ही ख्याल रखता मैं उसका, जिसकी वजह से मेरी बेटी को बदल दिया गया, केशव ने गुस्से में जवाब दिया। अभी तक तो केशव को ईशानी के बारे में पता भी नहीं था, फिर भी वो इतना गुस्सा थे। अगर उन्हें ये पता चला कि ईशानी के पैदा होते ही आदर्श ने उसे मर्चेंट फैमिली को दे दिया था और अब आदर्श की वजह से ईशानी इस दुनिया में नहीं रही है, तो उनका गुस्सा और भी बढ़ने वाला था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, जो भी हो आप इस बारे में मिसेस सिंघानिया से अकेले में बात कीजिएगा। इशिका प्रेग्नेंट है, ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। क्या सच में मेरी बेटी प्रेग्नेंट है? केशव ने अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, जिस पर अभिमन्यु ने सिर हिला दिया था। केशव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोले, तो मैं नाना बनने वाला हूँ। फिर तुरंत उन्होंने अपने चेहरे के भावों को सख्त करके अभिमन्यु से कहा, तुम तो मेरी बेटी से कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे और अब वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे उस घमंड और बेरुखी को भूल गया हूँ। चाहे मेरी बेटी ही माँ क्यों ना बनने वाली हो, तुम उसके साथ नहीं रहोगे अभिमन्यु राजवंश, उसकी शादी मैं एक अच्छे लड़के से करूँगा। उनकी कॉन्फिडेंस देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। वो बेपरवाही से सिर हिलाकर बोला, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, जिसके बाद आपकी बेटी आपसे दूर हो जाए? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर आपने हमें अलग करने की कोशिश की तो फिर से आपके और उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे। केशव अभिमन्यु की बात का मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। राधिका, इशिका और अरमान आगे की तरफ आ गए थे। राधिका ने एक बार केशव की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नीचे कर ली थी। सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो जाए ये सोचकर इशिका ने कहा, चलिए ना अंदर चलते हैं, हम कब से बाहर खड़े हैं। केशव ने उसकी बात पर हामी भरी, इशिका के चलते वो कुछ कह नहीं पाया। अंदर जाकर इशिका और राधिका ने देखा कि इंटीरियर को काफी हद तक बदल दिया गया था। पहले का इंटीरियर राधिका का डिसाइड किया हुआ था जो विंटेज लुक देता था, लेकिन अभी केशव ने सब कुछ काफी मॉडर्न तरीके से करवाया था। इशिका ने गहरी सांस लेकर इधर उधर देखा। घर भले ही अच्छा लग रहा हो पर अब वो राधिका का घर नहीं लग रहा था। इशिका ने एक नज़र राधिका की तरफ देखा तो वो थोड़ी मायूस नजर आ रही थी। इशिका उसके दिल का हाल समझ गई थी। आदर्श ने उसे कितना भी दुख क्यों न दिया हो, लेकिन राधिका ने इस घर को प्यार से सजाया था, वो इसे हमेशा अपना घर मानती थी। इशिका को इस तरह शांत और थोड़ा परेशान देखकर केशव ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया? नहीं सब अच्छा है, इशिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। वो केशव का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी जो उसे अच्छा महसूस करवाने के लिए इतने एफर्ट्स कर रहे थे। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। इशिका मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ रहो, मैंने बहुत कुछ मिस किया है। मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाने की हर कोशिश करूंगा, प्लीज मना मत करना, केशव ने काफी प्लीडिंग वे में पूछा।
इशिका ने जवाब में नरमी से कहा, मैं भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक मुझे अपने काम निपटाना है, उसके बाद मैं आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। इशिका के सारे काम दिशांक देख रहा था। फिलहाल प्रेगनेंसी के चलते अभिमन्यु ने दिशांक को भी यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब तक जरूरी ना हो तब तक वो इशिका को कॉल ना करे। ऐसे में इशिका ने काम का बहाना बनाया तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। कोई बात नहीं, मैं तब तक वेट करूंगा, और वैसे भी तुम्हारा कमरा मुझे अपने तरीके से डिजाइन करवाना है। तुम अपने काम निपटा कर आओगी तब तक तुम्हारा रूम भी तैयार हो जाएगा, केशव ने मुस्कुराकर कहा और फिर उन सबको डाइनिंग टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। केशव और अरमान आगे आगे चल रहे थे जबकि अभिमन्यु, राधिका और इशिका उनके पीछे थे। राधिका थोड़ी उदास लग रही थी। इशिका ने अभिमन्यु को आगे जाने का इशारा किया और वो राधिका के पास रुक गई। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं, इशिका ने पूछा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये घर आज मेरे लिए कितना अजनबी हो गया है, ये थोड़ा दुख हो रहा है। एक वक्त ऐसा था जब सबसे बचने के लिए मैं यहीं पर आई थी, इस घर ने मुझे और मैंने इस घर को दिल से अपनाया था, राधिका ने भारी आवाज में कहा। अब ये घर हमारा नहीं है माँ, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जल्द ही आपको आपका सुकून लौटाऊंगी, इशिका ने राधिका का हाथ सहलाकर कहा। राधिका ने इशिका की बात पर हामी भरी। उसने आगे कुछ नहीं कहा, वो भी केशव के उखड़े हुए बर्ताव का कारण समझ पा रही थी। आने के बाद केशव ने राधिका की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद केशव ने इशिका से कहा, मुझे तुम्हारी पर्टिकुलर चॉइस के बारे में पता नहीं था, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो, उम्मीद है कि तुम्हें आज का खाना पसंद आएगा, अगर तुम कहो तो मैं कुक को बोलकर कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं मिस्टर सिंघानिया, ये सब अच्छा है, इशिका ने जवाब दिया। खाना शुरू हो जाने के बाद वहाँ एक अजीब खामोशी पसरी हुई थी। केशव बार बार इशिका से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इशिका के कम बोलने के स्वभाव के चलते वो गिने चुने शब्दों में उनकी बात का जवाब दे रही थी। अभी भी उनके बीच एक दूरी सी थी। डिनर हो जाने के बाद वो सब लिविंग रूम में आ गए थे। इशिका का मिस्टर सिंघानिया से बात करना जरूरी था। उन्होंने आज अभिमन्यु को उनके डिवोर्स पेपर भिजवाए थे। इशिका डिनर हो जाने का ही इंतजार कर रही थी। वो इस बारे में केशव से बात करना चाहती थी। वहां आते ही इशिका केशव के पास बैठी और बोली, आपने अभिमन्यु को मेरे और उसके डिवोर्स पेपर भेजे थे, वो एक मजाक था ना?
बिल्कुल नहीं, कभी पूछा है अपने पति से? उसने मेरी बेटी से शादी करने के लिए कितने नखरे दिखाए थे। अब जब तुम मेरी बेटी हो तो पहले उसे मुझे कन्विंस करना होगा कि वो तुम्हें खुश रख पाएगा, केशव ने बिना किसी झिझक के कहा और फिर अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए देखा। मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए, मैंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। हाँ, इतने अमीर हो तो कमी किसी चीज की नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या? मैंने पता लगाया है कि वो इशिका को परेशान करती रहती है। पहले जब इशिका की पहचान उस मालविका की बेटी के तौर पर थी तब तो वो उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करते थे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी तुम्हारा परिवार बिल्कुल नहीं बदला होगा, केशव ने सिर हिलाकर कहा। हाँ, वो लोग नहीं बदल सकते, लेकिन मैं इशिका का हमेशा साथ दूंगा, अभिमन्यु बोला। बातों ही बातों में एक बार फिर उनके बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया था। अरमान इन सब में कुछ नहीं बोल पा रहा था, तो वहीं केशव को इस तरह जिद करते देख राधिका ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, ये आज भी उतना ही जिद्दी है, सामने वाले की सुनता ही नहीं चाहता, कहीं इसकी जिद की वजह से मेरी बेटी का घर पर बात ना हो जाए। अब इसे कौन समझाए कि अभिमन्यु जैसा लायक लड़का इशिका को कहीं नहीं मिल सकता, वो उसे तब भी प्यार करता था और उतना ही सम्मान देता था जब वो मालविका की बेटी थी। इशिका ने बीच बचाव करते हुए कहा, अभिमन्यु बिल्कुल सही कह रहा है, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है और मैं इसके साथ खुश हूँ। इशिका के बीच में बोलने की वजह से मिस्टर सिंघानिया थोड़े शांत हुए। वो इशिका से बोले, ये सच में तुमसे प्यार करता है ना, और तुम्हें खुश भी रखता ही होगा। इशिका ने मुस्कुराकर हाँ में पलके झपका दी। केशव ने गहरी सांस ली और कुछ पल रुक कर कहा, अगर इशिका कह रही है तो मैं उसकी बात मान सकता हूँ और इस डिवोर्स की जिद को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इशिका के साथ रहना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो पीछे नहीं हटोगे, लेकिन अगर तुमने मना किया तो तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना पड़ेगा। केशव की बात सुनकर राधिका का गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, वो अपनी जगह से खड़ी हुई और सख्त आवाज में बोली, ये क्या बचपना है मिस्टर सिंघानिया, बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपने फैसले लेने के पूरे हक हैं, आप इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए मिसेस सिंघानिया, बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं, केशव ने करवाहट से कहा और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, बोलो तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है, अगर तुम्हें इशिका के साथ रहना है तो तुम्हें घर जमाई बनना होगा। केशव की ये अजीब शर्त सुनकर सब हैरानी से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ओके, आप सब लोग बोलते रहते हो कि स्टोरी सीरियस चलता रहता है, सस्पेंस ही सस्पेंस है, इनकी लाइफ नॉर्मल नहीं होगी क्या? तो थोड़ा सा नॉर्मल लेकर चलने को मैंने बोला था, तो स्टोरी थोड़ी लाइट रहेगी। आई होप आप इसे एंजॉय कर रहे हो। अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।